नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम।
अरे कमो, क्या हो गया? तुम्हारी सुई आज ये रुक रुक के क्यों चल रही है? स्वागत है आपका हमसे है देश की इस नई कड़ी में। मैं हूँ कबीर और मेरे साथ है मेरी को-होस्ट कामायनी, जिनकी सुई आज कुछ पता नहीं रुकी रुकी हुई है।
नहीं कबीर, मेरी सुई नहीं रुकी है। मैं बस नमस्कार, वणक्कम, सलाम वालेकुम, इन सब शब्दों के बारे में सोच रही थी। ये सब इतने अलग अलग शब्द हैं, लेकिन सबका मतलब बिल्कुल एक ही है।
हाँ, मतलब तो एक ही है। तो आज हम इसी अनेकता में एकता की बात करेंगे। अनेकता जो हमारे देश का ऐसा स्तंभ है जिसकी वजह से हमारा देश विश्व के कई देशों से अलग है।
और हमारे संविधान में भी तो इस अनेकता को संभाल कर रखने के प्रावधान है।
ये भी ठीक कहा तुमने। वैसे अपना बुलबुल बाग भी कुछ ऐसा ही है। तो चलो सुनते हैं कि बेताल 26 में बुलबुल बाग के क्या हाल चाल है।
बेताल 26, बेताल 26, बेताल 26 रे।
अरे बेताल, आज मैं तुम्हें इतना उतावला हो नहीं ढूंढ रहा था जितना कि तुम बेताल। आज लगता है तुम कुछ बताना चाहते हो। आज लोकतंत्र की कौन सी घुट्टी पिलाओगे?
बहुत ही मजेदार किस्सा है जो तुम्हें सुनाना है। सुनो, बुलबुल बाग में चारों ओर खुशी की लहर थी। पूरा बुलबुल बाग कुछ ही दिनों बाद होने वाले जंगल उत्सव की तैयारी में जुटा हुआ था।
लोकतंत्र की नींव रखने के बाद आज हम सबके प्यारे बुलबुल बाग के पास एक मौका है कि हम बाकी जंगलों के लिए एक मिसाल बने। कल से होने वाले जंगल उत्सव के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। इस महोत्सव में हमारे बुलबुल बाग से जो दल जाएगा उसमें शामिल हैं बातूनी बंदर, बोल बच्चन बारा सिंगा, मेधावी मेंढक, भोला भालू और शेखचंद सारस।
अगले दिन चपल चींटी के साथ सभी जानवर जंगल महोत्सव की ओर चल पड़े। उत्साहित भोला भालू बोला,
बोल बच्चन, हमें तो बहुत डर लग रहा है और गुदगुदी भी हो रही है कि हम इतने बड़े महोत्सव में भाग जो ले रहे हैं।
हाँ भालू, डर तो हमें भी लग रहा है, पर ये देखो छुट्टन ने हमें क्या दिया है।
क्या?
बूढ़े बरगद का एक पत्ता देते हुए कह रहा था, गुड लक, ये बुलबुल बाग के लोकतंत्र का प्रतीक समझो। न जाने कहां से आती है उसमें इतनी समझदारी।
अरे तुमसे तो बिल्कुल नहीं आती होगी भालू। खैर, तुम कहोगे कि बातूनी बंदर फिर से ज्यादा बोल रहा है, पर ऐसे बूढ़े बरगद के टोटके वहां काम नहीं आने वाले। तगड़ा मुकाबला होगा। पता नहीं कौन कौन भाग ले रहा है बोल बच्चन।
हाँ बंदर, पता है, शेर दल, लक्कड़ बग्गा गैंग, मोरपंख टोली, यही सब ना। भाई सबके सब हमसे कितने अलग हैं, है ना शेखचंद सारस? हम सब उनके सामने अजीब तो नहीं लगेंगे?
अरे बोल वचन, तुम बड़े डरते हो हैं? अरे हम सब अजीब क्यों लगेंगे? देखो हम सब एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। आओ आओ साथ में एक सेल्फी लेते हैं, यादगार रहेगी। अरे बातूनी बंदर, थोड़ा सा चप्पल चीटी, आगे आओ आगे आओ, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा कर, थोड़ा मुस्कुरा कर।
सभी मैदान में पहुंच चुके थे। बुलबुल बाग की टोली को आता देख शेर दल हुर्राता है। उनमें से एक कहता है,
अरे हमें लगा बुलबुल बाग से प्यारी प्यारी नन्ही सी बुलबुल चिड़िया आएगी, पर ये सब कौन है? क्यों शानदार मोर?
अरे हाँ शेर, ये कैसा दल है? पूरे दल को देखने के लिए ऊपर से नीचे आंखें घुमानी पड़ती हैं। नहीं घुमाओ तो कोई ना कोई छूट जाता है।
टीटी से लेकर बंदर कोई समानता ही नहीं।
अलग अलग मुकाबलों में सभी जानवरों ने भाग लिया। सबसे पहले थी परेड। सभी दलों के बीच सबकी नजर जाती है बुलबुल बाग के दल पर जो सबसे अलग था। अगला मुकाबला होता है शबाब जंगल, जिसमें हर दल से एक जानवर ने अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन किया। बुलबुल बाग से था बोल वचन बारह सिंघा, जिसके सिंघों ने सबको मोह लिया। मेधावी मेंढक ने बातूनी बंदर से कहा, ट्र, ट्र,
ट्र। बातूनी बंदर, लगता है छुट्टन मियाँ का दिया टोटका काम आ रहा है। इतनी तालियां तो मोर के नाचने पर भी नहीं बजाई गई हैं, जितने इसके बस चलने भर से बज रही है।
हाँ मेंढक, वैसे मेरा पेड़ों वाला कर्तव्य भी लोगों को अच्छा लगा था।
बाकी और मुकाबलों के बाद वक्त आया नतीजों का। तब जंगल उत्सव के निर्णायक दल से उल्लू सामने आया और उसने कहा,
आज का ये मुकाबला बेहद मजेदार था, जहां मोर नाचे, शेर गुर्राए और बंदर भी खूब उछले। भाई हमारे लिए ये निर्णय लेना जरा मुश्किल पड़ गया था, पर इस मुकाबले की खास बात ये भी रही कि बुलबुल बाग ने पहली बार भाग लिया और हमारा दिल जीत लिया। भाग लेने वाले जानवर सभी कितने अलग हैं, पर सब साथ में कितने एक लगते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से इससे बेहतर किसी भी जंगल के लिए क्या हो सकता है? तो इस साल का जंगल उत्सव का पुरस्कार हम देते हैं बुलबुल बाग को।
अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। सही जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और अगर जानबूझकर गलत
जवाब दिया तो तुम भस्म हो जाओगे। हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ।
मुकाबले जीतना एक बात है, पर एक देश चलाना हो तो इतने सारे अलग अलग लोगों को भला कोई कैसे संभालेगा?
एकजुटता से सब कुछ संभव है। जैसे बुलबुल बाग में अनेकता में एकता है, वैसे ही सभी लोगों में होनी चाहिए, तब नेतृत्व करना आसान हो जाता है।
सही जवाब, और ये मैं चला।
बेताल, बेताल, बेताल।
तो सुना आपने, बुलबुल बाग की अनेकता में कितनी एकता है। अब चलिए भारत की विविधता को जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं अपने अगले सेगमेंट देश विदेश में।
देश विदेश से, देश विदेश से।
भारत विविधताओं वाला देश है। भले ही हिंदू धर्म को बहुत से लोग मानते हैं, हमारे देश में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और इस्लाम, इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और धर्म ही नहीं, अनेक भाषाएं, लोकगीत, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, अलग अलग संस्कृतियों का मेल है हमारा देश। कई शताब्दियों से भारत की जमीन बहुत से धर्मों, संस्कृतियों का स्वागत करती रही है। आर्य आए, तिब्बत और बर्मा से लोग आए, मंगोल भी आए, अरब से शासक आए, यहाँ तक कि दूर ग्रीस से ग्रीक लोगों ने भी इस जमीन पर कदम रखा और उनके साथ आई उनकी सभ्यताएं। और इसी मिश्रण को, इसी अनेकता को समय समय पर सींचा गया है, जैसे सातवीं और आठवीं शताब्दी में आया भक्ति काल। आगे आने वाले समय में हिंदू और मुसलमान के बीच के बढ़ते भेदभाव पर भी ऐसी विचारधाराओं ने प्रश्न चिन्ह लगाया और इस भेदभाव की व्यर्थता पर गाने, कविताएं और लेख लिखे।
चलो तो इस बात को और भी अच्छी तरह से समझते हैं और हमारे आज के मुख्य अतिथि सुधन्वर देश पांडे जी से बात करते हैं भारत देश की अनेकता में एकता के बारे में।
जानकार है कहते, जानकार है कहते।
सुधन्वर जी दिल्ली के जननाट्य मंच से जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रकाशन के क्षेत्र में भी काम करते हैं। सुधन्वर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन से सुनते आ रहे हैं भारत में अनेकता में एकता है, तो आज के दौर में अनेकता में एकता की समझ हम कैसे बनाएंगे?
मोटे तौर पर अगर हम देखें तो राष्ट्र की जो परिकल्पना है, ये काफ़ी नई चीज़ है। ऐसा नहीं है कि जब से इतिहास शुरू हुआ तब से राष्ट्र थे। ये जो परिकल्पना है, ये पूंजीवाद के विकास के साथ जुड़ती है। आम तौर पर हम ये मानते हैं कि 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में, जिसे हम आधुनिक राष्ट्र कहते हैं, ये राष्ट्र जो है ये निर्माण में आए। ये चीज़ यूरोप में हुई, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उससे एक तरह से उसकी शुरुआत हुई। उससे पहले ये होता था कि राजा और राजवाड़े होते थे और किंगडम्स होते थे, एम्पायर्स होते थे, साम्राज्य होते थे, लेकिन राष्ट्र नहीं होता था। राष्ट्र जिसके अंदर हर नागरिक का अपना एक अधिकार है, राष्ट्र की परिकल्पना जो है वो भाषा से और धर्म से जाकर के जुड़ी। एक भाषा बोलने वाले लोग एक राष्ट्र में रहेंगे, फ्रेंच बोलने वाले लोग फ्रांस में रहेंगे, जर्मन बोलने वाले लोग जर्मनी में, इत्यादि इत्यादि। भारत की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि एक राष्ट्र की एक भाषा हो, एक धर्म हो, एक संस्कृति हो, ये तो बड़ी विचित्र बात हमें लगती है। और हमें नहीं लगता कि ये भारतीय इतिहास का और भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारे यहाँ पर हमेशा से बहुआयामी रहा है ये देश, इसके अंदर बहुलता रही है, इसमें अनेकता रही है, और इसी अनेकता से जो चीज़ बनी है वो है भारत।
सुधन्वा जी, इस विविधता को बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
मुझे लगता है कि एक जो चीज़ जिसकी बहुत ज़रूरत है वो ये है कि जब हम छोटे होते हैं तब से लेकर के आगे तक, जिन मोहल्लों में हम रहते हैं, जिन स्कूलों में हम जाते हैं, और भी जो चीज़ें हैं जहाँ पर कि इंटरेक्शन होता है अन्य लोग, इन सारी जगहों पर हमें अनेकता जो है इंश्योर करनी है कि मोहल्लों में भी केवल एक धर्म के लोग इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा तोड़ने की ज़रूरत है। स्कूलों के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है कि तरह तरह के धर्म मानने वाले बच्चे हों, नास्तिक बच्चे भी हों, या मतलब ऐसे परिवारों के बच्चे जहाँ पर के कोई धर्म नहीं माना जाता, ऐसे बच्चे भी हों, तरह तरह के आर्थिक बैकग्राउंड के बच्चे हों। भारत की ये जो अनेकता है, जो बहुलता है, उसको अगर बरकरार रखना है और उसको और ज़्यादा समृद्ध करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे मोहल्लों में और हमारे स्कूलों में उसका रिफ्लेक्शन आए।
अब आज का सवाल, हमारे संविधान का कोई एक अनुच्छेद यानी आर्टिकल बताइए जो अनेकता और विविधता के हक में है। सवाल का जवाब देने के लिए फोन करें, नंबर है 07966210428।
हमें आप ईमेल और फोन कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस है freedom@idosyncmedia.org, freedom@idosyncmedia.org। SMS और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9958747972।
और अब नमस्कार, अलविदा, बाय बाय।
तो कबीर और कम्मो को दीजिए इजाजत।